आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
चौबीस अक्टूबर सोमवार, दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। त्योहारों के बीच देश दुनिया में भी कई चीजें हो रही हैं, वो भी आपको जाननी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के दिन भर में हम किन खबरों पर बात करेंगे। ऐतिहासिक दिन हो गया है आज का। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ऋषि के लिए कितनी मुश्किल होगी आगे की राह और लिज ट्रस्ट से अलग वो क्या नया पेश कर रहे हैं जानेंगे। फिर चलेंगे महाराष्ट्र, जहां चर्चा है कि 22 विधायक एकनाथ शिंदे खेमे के जल्द ही पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कहां से चल निकली ये बात और कितना है इसमें दम। और चलते चलते आखिर में बात होगी चक्रवात सितरंग की, जो कल पश्चिम बंगाल में दाखिल हो सकता है। कौन से राज्य होंगे इससे प्रभावित और क्या कोई चिंता भी है इस बात की, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से।
शुक्रिया जमशेद। ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, 28 अक्टूबर को लेंगे शपथ। कुलपतियों के इस्तीफे वाले केस पर केरल हाईकोर्ट का आदेश, जस्टिस रामचंद्र बोले गवर्नर के अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे सभी कुलपति। आज कारगिल पहुंचे पीएम मोदी, जवानों के साथ मनाई दीपावली। 7 राज्यों में होगा सितरंग तूफान का असर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। दिवाली के मौके पर अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को बांटी मिठाई, कमांडेंट बोले शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध। सीपीआई नेता केदारनाथ पांडे का हार्ट अटैक से निधन, दिल्ली की अस्पताल में चल रहा था इलाज। म्यांमार में सेना की एयर स्ट्राइक, 60 से ज्यादा लोगों की मौत। फिलीपींस में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला कोरियन प्लेन, सभी यात्री सुरक्षित। और T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रनों से हराया, काम न आया एकरमैन का अर्धशतक।
ये है आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज एंड एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। ब्रिटेन आज इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से भी गुजर रहा है। पिछले 6 सालों में इसने 3 प्रधानमंत्री देखे हैं और अब चौथे प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है। ऋषि सुनक के साथ पेनी मॉर्डेंट भी इस दौड़ में थी, लेकिन कांटे की टक्कर नजर नहीं आई। कहां ऋषि को 180 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिल रहा था और पेनी मॉर्डेंट जरूरी सांसदों की संख्या जुटाने में कामयाब नहीं हो पाए, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कल तक रेस में बने हुए थे, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार करते हुए अपना नाम वापस ले लिया कि उनके पास उस हिसाब से सांसदों का सपोर्ट नहीं है जितनी दरकार है। ये भी कहा गया कि नाम वापस लेने से पहले जॉनसन ने ऋषि सुनक से मुलाकात की थी। 28 अक्टूबर को ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री यानी कि ऋषि सुनक का शपथ ग्रहण होगा। 29 अक्टूबर को नए कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये जानना दिलचस्प है कि ऋषि सुनक ही ब्रिटिश पीएम के लिए सांसदों की पहली पसंद क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, पूछा मैंने जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से।
देखिए, ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उन्होंने, हालांकि जिस तरह लिज ट्रस ने वो बजट पेश किया है, उन्होंने किया था मिनी बजट जो पेश किया था, उससे उलट उनका कोई बजट प्रपोजल नहीं था, लगभग सेम था, लेकिन एक्सपीरियंस देख के वो उनसे एक डिफरेंट बजट पेश करेंगे। पहला तो वो डिफरेंस होगा। दूसरा, जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप है या एमपीज है, उनका विश्वास ऋषि सुनक में ज्यादा है। जैसे पिछले भी इलेक्शंस हुए थे कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स का, एमपीज का, चुनने के लिए प्राइम मिनिस्टर, उसमें ऋषि सुनक आगे चल रहे थे, लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी के इलेक्टर्स थे उन्होंने उनको नापसंद किया था, या यूं कहें कि बहुत कम मार्जिन से लिज ट्रस को आगे रखा था उसमें। तो ऋषि सुनक का एक एडवांटेज है जो अभी उनके साथ रहेगा, लेकिन उनकी चैलेंजेस बहुत होंगी, इतनी होंगी कि शायद रीसेंट हिस्ट्री में कोई वैसा प्राइम मिनिस्टर ने फेस नहीं किया। मार्गरेट थैचर ने भी वो चैलेंजेस फेस नहीं किए, हालांकि उन्होंने इकोनॉमी सुधारी, इंग्लैंड का इंप्रेशन सुधारा, लेकिन अभी ब्रिटेन के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऋषि सुनक को उसमें खड़ा उतरना होगा, और खासकर कंजर्वेटिव पार्टी का फेस जो जनवरी 2025 इलेक्शन में होगा, उसका फेस बनकर उनको सामने आना होगा।
अमिताभ जी, ऋषि सुनक की अगर हम लिज ट्रस से तुलना करते हैं तो दोनों का विजन एक दूसरे से कितना अलग दिखता है आपको?
देखिए, अलग बेसिकली कुछ नहीं है, अलग जो वही है कि लोगों का कॉन्फिडेंस या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस किसमें कितना है। ये ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा है, क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, न कि कोई फर्क हो। दोनों कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, दोनों ने लगभग एक समय में राजनीति में कदम रखा था, दोनों की जो एक्सपीरियंस है या उम्र है वो लगभग बराबर है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ परसेप्शन का डिफरेंस है और लोगों का कॉन्फिडेंस में डिफरेंस है। लेकिन ऋषि सुनक प्रोएक्टिव दिखते हैं, बातें जो उनकी होती हैं वो ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं लिज ट्रस के कंपैरिजन में। और लिज ट्रस का जो इनिशियल जो बॉचअप था, जो गड़बड़ी थी, वो क्वाजी क्वार्टेंग के मिनी बजट में, वो शायद ऋषि सुनक उस एक्सपीरियंस से एनरिच होकर वैसा नहीं करेंगे।
मौजूदा हालात को अगर ध्यान में रखें तो फ्यूचर कैसा दिख रहा है ब्रिटेन का? क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं ऋषि सुनक के सामने?
देखिए, ब्रिटेन की क्राइसिस जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी का जो वर्तमान सेशन है या सेशन ऑफ पार्लियामेंट है जनवरी 2025 तक, उससे भी ज्यादा है। क्योंकि देखिए, ब्रिटेन का प्रॉब्लम ये नहीं है कि लिज ट्रस बनी थी या बोरिस जॉनसन बने थे, उन्होंने पार्टी की थी। ब्रिटेन का प्रॉब्लम है कि ब्रेग्जिट से वो बाहर आया है, एक नई आर्थिक अरेंजमेंट्स इनको करनी है यूरोप के साथ, उन्होंने किया बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में। उसके अलावा एक वाइडर वर्ल्ड के साथ इनको इकोनॉमिक अरेंजमेंट करना है कि इनकी इकोनॉमी सफर नहीं करे। दूसरा, यूक्रेन युद्ध के आने के चलते जो इन्फ्लेशन बढ़ा है और खासकर एनर्जी बिल्स जो बढ़ी हैं, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी या किसी प्राइम मिनिस्टर के बस में नहीं था, उनको कंट्रोल करना है। तो ये प्रॉब्लम जो होगी, ये इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होगी वो इस साल तक होगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी होंगे। क्योंकि रशिया ने जिस तरह से पूरे यूरोप को ब्लैकमेल करके, एक तरह से कहा जाए, और उनका एडवांटेज लेके उन्होंने गैस सप्लाई और हो सकता है पेट्रोल सप्लाई या पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई, उसको भी बाधित करे, तो ये एक लॉन्ग टर्म मेजर होगा। इसका 2 साल या उससे 2 साल और मान लें, ऐसा नहीं होगा। ये आने वाली जो भी सरकार होगी 2025 जनवरी के बाद, उनको भी फेस करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है।
बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रोफेसर अमिताभ सिंह। बात निकली है, कितनी दूर तक जाएगी वक्त बताएगा, जो शिवसेना का गुट अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहा है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे जिसके नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कहा जा रहा है कि उस गुट के 22 विधायक शिंदे से नाराज हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दावा किया है ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उसके माउथपीस यानी कि मुखपत्र सामना ने। सामना ने यहां तक लिखा है कि सरकार के सभी जरूरी फैसले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लेते हैं और शिंदे महज उसका ऐलान करते हैं। क्या वाकई इस तरह के क्लेम्स में कुछ हकीकत है या फिर ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है खेमा बदलने वाले विधायकों में फूट डालने की? पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर मुस्तफा शेख से।
बिल्कुल, ये बात बराबर है कि जो क्लेम है वो जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना है, जो नई शिवसेना है, उनका माउथपीस है सामना न्यूज़पेपर, उसके संडे कॉलम में आई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट उनका है। लेकिन जो बात कही गई है उसमें वो ये बात है कि एकनाथ शिंदे ने जब सरकार में आया तो उन्होंने ये कहा कि वो शिवसेना पार्टी है, उन्होंने अभी उनको नया सिंबल और नई पार्टी मिली है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना का ये कहना है कि कुछ जो विधायक हैं, 40 विधायकों में से 22 विधायक जो हैं, वो एकनाथ शिंदे से नाराज है, या फिर उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का जो फ्यूचर है, क्योंकि पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर पे उनको डाउट लग रहा है, इसीलिए वो एक सेफ बिड ये ले रहे हैं कि सरकार में रहते हुए सरकार में जो दूसरा मित्र पक्ष है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसमें सम्मिलित हो जाए ताकि सरकार में वो लोग बने रहे और सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी ऑर्डर आएगा तो वो उन पर लागू नहीं होगा। तो इस चीज का जिक्र सामना में रोक टोक संडे कॉलम में किया गया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की नाराजगी एकनाथ शिंदे से चल रही है और एक सेफ ऑप्शन जो है इन 22 विधायकों को ये लग रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले।
मुस्तफा, एक बात बताइए कि ये जो क्लेम्स हैं कि एकनाथ शिंदे को एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत मुख्यमंत्री बनाया गया है और उनसे कभी भी ये कुर्सी छीनी जा सकती है, इसका क्या कोई बेस है?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है वो ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि एकनाथ शिंदे को जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया है वो फिलहाल अगर उनकी जरूरत है इसलिए बनाया गया है। नैरेटिव ऐसा बीजेपी के खिलाफ उद्धव ठाकरे शिवसेना का होता है कि बीजेपी जो है वो इस्तेमाल करने के बाद लोगों को दरकिनार कर देती है, तो एकनाथ शिंदे को भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो लोग दरकिनार कर देंगे, ऐसा नैरेटिव के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि एकनाथ शिंदे को कभी भी मुख्यमंत्री पद की उनकी जो वर्दी है वो बीजेपी निकाल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अलग हुए हैं उनको ये संदेश देने की कोशिश है कि अनसर्टेनिटी है वहां पर, बीजेपी के साथ वो लोग खुश नहीं है, और इस बात की जो बात करने जिक्र है वो इसीलिए रोक टोक में किया गया है कि एकनाथ शिंदे जो है वो परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं है महाराष्ट्र के। कहीं ना कहीं कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कभी भी मुख्यमंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे का जा सकता है, एकनाथ शिंदे से कोई भारतीय जनता पार्टी के जो शख्स है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस बात का जिक्र किया गया।
एक आखिरी सवाल, शिंदे गुट यानी मुख्यमंत्री की तरफ से क्या इस पर कोई सफाई आई है?
बिल्कुल, अभी तक ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है शिंदे गुट की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग इस बात को नकार रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, ये कह के कि एक अल्टीरियर मोटिव से इस पूरी ऐसी बातों को फैलाया जा रहा है, ये बातें सारी जो है वो रूमर है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो है वो उद्धव ठाकरे शिवसेना सामने इसलिए लाते हैं कि कुछ एमएलए ऐसे हैं जो बीजेपी में सम्मिलित नहीं होना चाहते, इसीलिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना को लगता है कि वो जो एमएलए हैं वो उनके पास अगर वापस आ जाते हैं तो उनका जो इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर अभी असली शिवसेना कौन है इस पर डिसाइड करने जाएगा तो ज्यादातर एमपी और एमएलए जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो बदलने की कोशिश जो है वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना की ओर से की जा रही है, और इसीलिए इस तरीके का आर्टिकल लिखा गया।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, मुंबई से मुस्तफा शेख। और आखिर में बात साइक्लोन सितरंग की। बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ ये तूफान तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सुबह इसके पश्चिम बंगाल में दाखिल होने के आसार हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक या दो जगह पर हल्की बारिश हो सकती है, वहीं तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पश्चिम बंगाल में रह सकता है। कौन से जिले यहां के साइक्लोन सितरंग की वजह से प्रभावित हो सकते हैं और इस तूफान का फिलहाल स्टेटस क्या है, पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋतिक मंडल से।
देखिए, सोमवार दोपहर के जो वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो बुलेटिन दिया गया है उसके मुताबिक ये जो सितरंग है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल के जो सागर आइलैंड है उससे करीब 380 किलोमीटर दूरी पर है, और जहां पर लगभग जो लैंडफॉल कहा गया है वो बांग्लादेश के बरिशाल डिस्ट्रिक्ट में है, जो फिलहाल वहां से फिलहाल इस साइक्लोन सितरंग की जो दूरी है वो कहा जा रहा है कि 580 किलोमीटर। तो हम मान सकते हैं कि फिलहाल जो मौजूदा हालात है कि आज देर रात तक और शाम के बाद मौसम का हाल बिगड़ेगा। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाका है खासकर 224 परगना उत्तर और दक्षिण, इसमें काफी असर इसका देखा जा सकता है। हालांकि फिलहाल हवा का रुख और ये जो सितरंग का मौजूदा स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से होकर ये बांग्लादेश के जो बरिशाल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लैंडफॉल होगा, लेकिन इन दो इलाकों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। हम समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे आगे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जो डेल्टा एरिया है वहां पर भी इसका असर हो सकता है। तो ये जो स्थिति है और इसके चलते पश्चिम बंगाल के कई सारे जिले 224 परगना, हुगली और पूर्व मिदनापुर, कोलकाता, इन सब जगहों में काफी ज्यादा बारिश होगी, ऐसा जो लेटेस्ट अपडेट है उसके INDIA की तरफ से उसके इस दौरान बताई गई है।
ऋतिक, स्केल क्या है इसका, क्या कोई चिंता की भी बात रहेगी और एहतियातन इंतजामात किस तरह के हैं?
तमाम इंतजाम किया गया है, खासकर पश्चिम बंगाल के ये इन जिन दो जिलों के बात मैंने किया, ये साउथ 24 परगना जो तटीय इलाका है और नॉर्थ 24 परगना, इन दोनों में एहतियातन कई सारे कदम उठाए गए हैं। इसके पास पर इसके साथ जो पूर्व मिदनापुर है या फिर हुगली, इन सब जगहों में NDRF और SDRF के कई सारे टीम स्ट्रेटेजिकली इन्हें तैनात किया गया है ताकि इस आपदा के फौरन बाद वो राहत के लिए पहुंच सके। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो नबान्नो है इन्हें स्टेट सेक्रेटरिएट वहां पर एक कंट्रोल रूम नजर रखने के लिए बनाया गया है। और इसके साथ साथ क्योंकि जो मेट डिपार्टमेंट का जो कहना है कि अगर जैसे सुंदरबन के इलाकों से होकर ये जो तेज हवाएं यहां से गुजरती है गास्टिंग विंड कहा जा रहा है कि कल सुबह या फिर आज देर रात तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार इसका हो सकता है। तो अमूमन ऐसा ख्याल है कि उन जगहों में जो कच्चा मिट्टी से बना घर है उसमें काफी असर देखा जा सकता है। आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुंदरबन जो मैनग्रोव एरिया है यहाँ पर काफी सारा नुकसान इस चक्रवाती तूफान के चलते हो सकते हैं। तो इसके चलते वहां पर जो है काफी सारे जगह में इनंडेटेड होने की संभावनाएं हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कई सारे जगह से लोगों को हटाया गया है, जो शेल्टर होम है वहां पर पहुंचाया गया है, जो मिट्टी के कच्चे घर में रहते हैं उन्हें निकाला गया है। हिदायत ऐसे दी गई है जो समुन्द्र में जो मछुआरे हैं वो ना जाए, 20 तारीख के बाद ही उन्हें लौटने का हिदायत दी गई थी, 22 तारीख तक वो सब लौट गए हैं। तो इसके साथ साथ हम देख सकते हैं फिलहाल आपको मैं जहां पर हूँ साउथ 24 के बौखाली में यहाँ पर देखा जा सकता है कि माइकिंग वगैरह किए जा रहे हैं ताकि लोग समुन्द्र के किनारे ना पहुंचे कल सुबह तक।
शुक्रिया ऋतिक मंडल। और अब पॉडकास्ट को समेटने का वक्त है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, आज नामी गिरामी का भी नया एपिसोड आ गया है। आप आज उसमें सुन सकते हैं भारत के बर्ड मैन कहे जाने वाले सलीम अली की कहानी, जिन्होंने आजादी से पहले चिड़ियों का सर्वे कराया था और इसने रिसर्च को लेकर कई नए रास्ते खोल दिए थे। सुनिए इसे और बताइएगा कि कैसा लगा। हमें आप मेल कर सकते हैं, हमारा पता वही है radio@aajtak.com। फिलहाल इतना ही। दिनभर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग थी सचिन द्विवेदी की, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दिवाली की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।